الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور پچھلے جمعے میں بھی اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایک بہت ہی بنیادی قسم کی بیماری کی اصلاح فرمائی ہے وہ بیماری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تو تلاش کرنے میں بڑے ہوشیار ہیں دوسروں پر تنقید کے لیے ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں فلاں یہ کرتا ہے فلاں یہ کرتا ہے لوگوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے اس پر تبصرے ہماری مجلسوں میں دن رات ہوتے رہتے ہیں حکومت کی خرابیاں سیاستدانوں کی خرابیاں دوسرے معاشرے کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اس معاشرے کے فساد کے جو ارکان ہیں ان کی خرابیاں یہ ہماری زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں تقریباً ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس بات کا بھی رونا ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں رشوت کا بازار گرم ہے حرام و حلال کی پرواہ نہیں ہے یہ ساری باتیں ہماری مجلسوں کا موضوع ہوتی ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہماری اس بیماری کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کی خرابیوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی ہر ایک انسان کو اس کو اپنے افعال کا جواب دینا ہے لہذا تم دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع اور تنقید سے زیادہ اپنی فکر کرو علیکم انفسکم تم اپنی خبر لو میں کتنے پانی میں ہوں میں کہاں کھڑا ہوں میں اللہ جل جلالہ کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہوں اس کی فکر میں پڑ جاؤ حقیقت یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی بیماریوں سے اور اپنے برائیوں سے غافل رہتے ہیں تو ہر وقت دوسروں کے اوپر ہماری نگاہ رہتی ہے اور دوسروں پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خود ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں کتنی خامیاں ہیں تو اگر ہم اپنا جائزہ لیتے رہا کریں वक्तन फवक्तन अपना जायजा लें कि भाई मेरे अंदर क्या खराबियां हैं, मेरे अंदर क्या अयूब हैं, मैं किन बुराइयों का शिकार हूं, तो फिर दूसरों को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बहादुर शाह जफर मरहूम का यह शेर बड़ा हिकमत वाला है। वो कहते हैं कि थे जो अपनी बुराई से बेखबर, रहे औरों के ढूंढते ऐब होनर, रहे अपनी बुराई से बेखबर, रहे औरों के ढूंढते ऐब होनर, पड़ी अपनी बुराई पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जब अपनी बुराई पर नजर पड़ जाती है, आदमी को अपनी फिक्र पड़ जाती है, तो फिर दूसरों के अंदर जो खामियां हैं, खराबियां हैं, उनकी तरफ निगाह नहीं जाती, आदमी खुद अपने ऊपर गौर करता है। अगर एक आदमी के पेट में शदीद दर्द हो रहा हो, खुद उसको बीमारी लगी हुई है, तो वो अपनी बीमारी की फिक्र करेगा या दूसरों के नजर जुकाम को देखता बढ़ेगा कि भाई दूसरे को नजला हो रहा है कि इसको जुकाम हो रहा है, वो तो अपनी फिक्र में लग जाएगा। तो कुरान करीम हमें यह फरमाता है कि अलैकुम अनफुसकुम, तुम खुद अपनी फिक्र करो, अपनी खबर लो कि मैं कहां हूं। और ये खबर कैसे ली जाए, किस तरह खबर लें हम अपनी कि हम में कहां खराबी है, कहां खामी है, उसका मेयार बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से कुरान करीम में। दूसरी जगह मेयार ये बता दिया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है जो हमने तुम्हारे सामने पेश किया है। यानी इस कायनात में की तखलीक का जो सबसे बड़ा शाहकार अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, वो जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पैदा फरमाया, और ये ऐलान कर दिया कि इनके जिंदगी का एक एक फेल तुम्हारे लिए नमूना है। वो अकायद में नमूना है, वो इबादात में नमूना है, वो मुआमलात में नमूना है, वो अखलाक में नमूना है, वो मुआशरत में नमूना है। तो अपना जायजा लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि कोई ऐसी किताब आपके हमारे सामने हो जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बयान की गई है, आपके सिफात बयान फरमाई गई हैं, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके बयान फरमाए गए हैं, उसको हम अपने सामने रखें और सामने रखकर अपना उससे मुआजना करें कि भाई मैं इस ये जो सिफात बयान की जा रही हैं नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन सिफात में उसका कोई शायबा मेरे अंदर है या नहीं है। मसलन रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में यह था कि आप बुर्दबार थे, हलीम थे, और हलीम के माना ये कि दूसरों के साथ हमेशा आप खुश अखलाकी से, मोहब्बत से, खैर खाही से बात किया करते थे। और कोई कितने ही गुस्सा करने वाले, दूसरा गुस्सा कितना भी कर रहा हो, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते थे। हदीस सही बुखारी में हदीस है कि एक साहब थे, किसी वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई ऊंट लिया था, और उस ऊंट की, यानी वो ऊंट वाजिब हो गया था नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे, आपने अपने जिम्मे ले लिया था किसी वजह से, किसी अक्द की बुनियाद पर, कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट अदा करना था किसी का। वो साहब आए और आकर बड़े गुस्से में नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया, मेरा ऊंट वापस करो, मेरा ऊंट दो, क्यों देर लगा रहे हो वगैरह, सख्त कलामी से इख्तियार की। अब आप जरा तसव्वुर फरमाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी के, बहैसियत रसूल के जो मकाम था वो तो अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत एक इंसान के आपकी नबूवत से पहले भी जिंदगी ऐसी गुजरी कि लोगों के साथ आपका मामला इंतहाई नरम होता था और आप सादिक और अमीन के लकब से पुकारे जाते थे। दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन समझता था कि ये कभी कोई खयानत नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ कोई दियाती नहीं कर सकते, नबूवत से पहले भी। ऐसे शख्स जिसकी सारी जिंदगी सादिक और अमीन की सिफात से लबरेज हो, उसको एक आदमी आकर भरे मजमे में और डांट रहा है, सख्त कलामी इख्तियार कर। जाहिर है कि सहाबे किराम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, उनको कैसे गवारा हो सकता था कि एक आदमी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटे। तो सहाबे किराम ने चाहा कि उसको उसको कुछ जवाब दें। आपने फरमाया रहने दो, रहने दो। और ये फरमाया कि जिसका कोई हक होता है दूसरे के जिम्मे, उसको कुछ कहने की भी गुंजाइश होती, इन साहिबिल हक के मकाल। इस वास्ते उस, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं हुआ कि वो बदतमीजी थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जा रही थी, उस बदतमीजी का जवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह साहबा को रोका कि इसको कोई बुरा भला ना कहो, इसलिए कि साहिब हक है, बाकी हमारे जिम्मे एक हक है वो अदा करना है, तो इसको कहने दो। और फिर ये फरमाया कि जितना, जितनी कीमत का ऊंट मेरे जिम्मे वाजिब है उससे ज्यादा कीमत का इसको अदा करो, उसको ज्यादा कीमत का अदा किया। अब ये हिल्म देखिए, हिल्म की सिफत के दूसरा मुका गुस्से का मुजाहरा कर रहा है, डांट डपट कर रहा है, और उसके जवाब में आप हिल्म का, बुर्दबारी का मुजाहरा फरमा रहे हैं। ये सुन्नत है रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि गुस्से के मुकाबले में गुस्सा नहीं, गुस्से के मुकाबले में ठंड, गुस्से के मुकाबले में बुर्दबारी, उसके मुकाबले में नरमी, ये एक सिफत है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई और आपने सारी जिंदगी इसके ऊपर अमल किया। एक साहब से वादा हो गया कि किसी वक्त फलां जगह पर मिलेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के, उसी वक्त के मुताबिक जगह पर पहुंच गए क्योंकि वादा किया था, वो साहब नहीं मौजूद थे। आप वहां खड़े रहे, और यहां तक के रिवायत में तो यह आता है कि रोजाना जाकर वहीं पर खड़े रहते, 3 दिन इसी तरह गुजारे। 3 दिन के बाद वो साहब टहलते हुए आ रहे कि वादा किया था फला जगह मिलने का। अभी जो शख्स 3 दिन जिसने वादा खिलाफी की और तकलीफ दी कि आदमी इंतजार कर रहा है उस जगह खड़ा हुआ, उसको परवाही नहीं, उसके साथ सिर्फ इतना कहा कि भाई तुमने मुझे 3 दिन तक इंतजार में क्यों रखा, बस ना कोई डांट, ना कोई डपट, ना कोई गुस्सा। तो ये औसाफ हैं, ये हैं सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हिल्म, दुआ भी फरमाई और उस दुआ की तलकीन भी की, हम सब को तलकीन की, अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म, कि अल्लाह मुझे इल्म से मेरी मदद फरमा, इल्म से मेरी मदद फरमा और वज़य्यिन्नी बिल हिल्म, एक रिवायत में अल्लाहुम्मा अग़निनी बिल इल्म, कि अल्लाह मुझे इल्म में गनी बना दे, और वज़य्यिन्नी बिल हिल्म और मुझे जीनत अता फरमा हिल्म के अंदर, हिल्म के जरिए, कि मेरे अंदर ऐसा हिल्म हो, ऐसी बर्दवारी हो कि दूसरे लोगों के गुस्से के जवाब में मैं हमेशा ठंडा रहूं, बुर्दबारी का मुजाहरा करूं। अब आप हम सब, ये एक बस मैंने बयान किया, हम सब अपना जायजा लेकर देखें कि क्या हमारे अंदर यह हिल्म है। तो अगर नहीं है तो इसके माना यह कि हम ऐबदार हैं, हमारे अंदर ऐब, हमारे अंदर खामी, हमारे अंदर खराबी है। तो जब हमारे अंदर यह खराबी मौजूद है तो मियां दूसरों को क्या तुम मलामत करते हो जब तुम्हारे अंदर खुद मौजूद है यह खराबी। रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म दुनिया के अंदर मशहूर, सारी दुनिया जानती है। आपका दूसरों के साथ खुशगवार अंदाज में मिलना और दूसरे की गाली का जवाब गाली से न देना, कितना ही कोई शख्स बुरा भला कह रहा हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसका कोई सख्त जवाब, गाली का जवाब गाली से नहीं। सारी जिंदगी इसी में गुजरी, दुश्मनों से भी सबका पेश आया, काफिरों से भी सबका पेश आया, लड़ाइयां भी हुई, जंग भी हुई, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान पर किसी का, किसी के लिए सख्त कलिमात नहीं निकले। आपकी जो सिफात पहले से जो किताबें नाजिल हुई थी, तौरात और इंजील वगैरह, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात मजकूर हैं, उन सिफात में एक बहुत बड़ी सिफत यह बयान की गई है तौरात में, आज भी मौजूद है, कि वो नबी जो आखिर दौर में आएंगे, खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आखिरी नबी जो आएंगे, जो तशरीफ लाएंगे, वो कैसे होंगे कि उनकी बाजारों में आवाज सुनाई नहीं देगी, ये अल्फाज मौजूद हैं, और वो बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे। ये पहले से सिफत बयान कर दी गई थी नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, तौरात में यह सिफत बयान कर दी गई थी। अब यह एक सुन्नत है रसूल करीम, तो ये अंदर अपने अंदर पैदा करने की जायजा ले हर इंसान हम में से, कि भाई मैं इस सिफत पर कितना मैं अमल करता हूं। ये जो कुरान फरमा रहा है, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी खबर लो, अपने हालात का जायजा लो और देखो कि कहां खराबी है, तो उसके लिए हमने तुम्हारे सामने एक आईना रख दिया है। वो आईना क्या है? नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आपके अखलाक, आपके आदात, आपका किरदार, दूसरे लोगों से आपका मामला, ये सब रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने रख दिया। एक शख्स आता है और आकर कहता है, या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए, जिना की इजाजत दीजिए मुझे, मैं जिना करना चाहता हूं, छोड़ नहीं सकता, कोई और हो हम जैसा तो उसको डांट कर भगा दे, क्या बकवास कर रहा है, लेकिन सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखा, शफकत से फरमाया कि तुम जो काम किसी किसी की बहन या बेटी के साथ करना चाहते हो, अगर कोई वो दूसरा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के साथ करे, पसंद करोगे? तो उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा कि जब तुम कई रिश्तों का नाम लिया, अगर तुम्हारी बहन के साथ करना चाहे, तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहे, तुम्हारी माँ के साथ करना चाहे, पसंद करोगे? हर चीज हर एक का नाम अलग अलग लेकर हर एक के बारे में कहता रहा कि नहीं जी नहीं नहीं नहीं। आपने फरमाया कि फिर जिसके साथ तुम ये अमल करोगे वो भी किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी। जब तुम अपने लिए पसंद नहीं करते ये बात, तो दूसरों के लिए कैसे पसंद करते? ठंडक पड़ गई उस शख्स के दिल में और अल्लाह ताला ने उसको तौबा की तौफीक दे दी। अगर उसको डांट वांट पिलाते कि क्या बकवास कर रहा है, ये कोई मांगने की बात है, अल्लाह के रसूल से मांग रहा है कि मैं जिना करना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ना डांटा ना डपटा, मोहब्बत प्यार से उसको समझा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसकी इस्लाह कर दी। तो ये सारी सिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सब सुन्नत है। बेशक बहुत सी सुन्नतें ऐसी हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दे दी है, भाई दाढ़ी रखना सुन्नत है, कुर्ता पहनना सुन्नत है, और अपने पांचों को टखनों से ऊंचे रखना सुन्नत है, बैतुल खला में जाते हुए बायां पांव पहले दाखिल करना और निकलते हुए दायां पांव पहले निकालना, मस्जिद में दाखिल होते हुए दायां पहले रखना बायां पहले बाद में निकालना, ये सब सुन्नतें हैं बेशक, और इनमें से बहुत सौ पर शायद हम अमल भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन सुन्नतें इनमें मुनहसिर नहीं हैं। असल सुन्नत यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के साथ क्या मामला फरमाते थे, दूसरों के साथ क्या मामला फरमाते थे, अपनी बीवियों के साथ क्या मामला था, अपने साथियों के साथ क्या मामला था, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या मामला था, ये सारी सुन्नतें हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करके बस कहने भाई हम तो मुत्तबे सुन्नत हैं, दाढ़ी रख ली मुत्तबे सुन्नत। बेशक अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने उस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक बख्शी, ये भी कोई मामूली बात नहीं है, ये भी अल्लाह ताला का फजल करम है, बहुत सौ को हासिल नहीं है, अल्लाह ने अता फरमा दी, उसकी कोई बेकदरी करनी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिफात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक एक सिफत, गुस्से के मौके पर आपका क्या तर्ज अमल होता था, दूसरों की तरफ से तानो तशनी और दूसरों की तरफ से तकलीफ पहुंचाने की सूरत में आपका तर्ज अमल क्या होता था, आप अपनी अजवाज के साथ बीवियों के साथ क्या बर्ताव करते थे, आप अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह रहते थे, उनके किस तरह हुकूक अदा फरमाते थे, ये सारी सुन्नतें हैं। अगर खरीदो फरोख्त का कोई मामला होता था तो क्या करते थे, हमेशा जितना हक अपने ऊपर वाजिब हुआ उससे ज्यादा दे दी। उस हालत में जबकि बाद औकात तीन तीन महीने तक घर में आग नहीं जलती थी, उस हालत में भी जब किसी दूसरे के साथ मामला हुआ तो जितना हक वाजिब था उससे ज्यादा उसको दिया, हमेशा। अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया दिली का एक पैकर बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी सुन्नतें मौजूद हैं, लिखी हुई हैं हदीस की किताबों में भी, सीरत और सुन्नत की किताबों में भी, उनको आदमी पढ़े और पढ़कर हर सुन्नत के साथ अपने आप अपना जायजा ले, इस सुन्नत पर मैं कितना अमल कर रहा हूं। मेरे शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी कदसल्लाहु ताला सिर्रहु की एक किताब है उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतें जमा कर दी, सुन्नतें जो इबादात से मुतालिक हैं वो भी, आप तहारत में क्या सुन्नत है आपकी, नमाज पढ़ने में क्या सुन्नत है ये भी, और अखलाक में मामलात में माशरत में क्या तौर तरीका अपनाया हुआ था उसको जमा कर दिया है एक किताब में। यूं तो और भी किताबें बहुत हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बयान की गई हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जामियत के साथ वो किताब आप हम में से हर एक सामने रख ले, एक एक सफ़ा पढ़ता जाए और अपना जायज़ा लेता जाए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर किस दर्जा अमल पैरा हूँ। अगर किसी सुन्नत पर मैं अमल करता हूँ पहले से तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस सुन्नत पर अमल की तौफीक बख्शी। और जिस सुन्नत पर अमल का अभी तक दाइया पैदा नहीं हुआ या वो अमल करने की तौफीक नहीं हुई उसको शुरू कर दे। उसमें से बाद सुन्नतें तो ऐसी होंगी जो महज लापरवाही की वजह से हम नहीं अदा करते, जैसे मैंने अभी बोला कि मस्जिद से निकलते हुए बायां पांव पहले निकाले आदमी और दाखिल होते हुए पहला बायां पांव दायां पांव, क्या मुश्किल है इसमें? कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर अमल नहीं है महज लापरवाही है, अगर इतना भी कर लो तो एक सुन्नत पे अमल तो हो गया, तो कि तुमने पांव पहले बायां निकाला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक कह दिया, बैतुल खला में जाते हुए बायां पांव पहले अंदर दाखिल किया दाएं पाएं बाद में किया, कोई तकलीफ नहीं इसमें, आराम से आदमी सुन्नत पर अमल कर सकता है। तो जो ऐसी आसान सुन्नतें हैं उन पर तो फौरन, जो बेपरवाही से हम छोड़े हुए, और जिनके लिए अपने नफ्स पर काबू पाने की ज़रूरत होती है उसके लिए अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दूँ और अल्लाह ताला से दुआ करें। अगर गुस्सा आता है मुझे बहुत, दूसरों पर गुस्से का मैं इजहार करता हूँ, गुस्सा जो है एक बड़ी ज़बरदस्त कमज़ोरी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो अपने ऊपर ज़रा थोड़ी ज़बरदस्ती करना शुरू करें। जो कुरान ने तरीका बताया है कि ऐसे मौके पर जब गुस्सा आए तो आदमी अल्लाह से अल्लाह की पनाह मांगे शैतान रजीम से, वो करे ज़बरदस्ती करे, दुआ भी करे या अल्लाह मेरी इस आदत को ठीक कर दीजिए, मगर फिक्र तो हो कि मेरे अंदर ये खराबी है किससे दूर होगी। उसका रास्ता यही है कि उसवा हसना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सामने हो और उसमें से एक एक चीज़ को लेकर आदमी उसके अपना जायज़ा लेता रहे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें मुत्तबे सुन्नत बनाए और हमारी सारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला सुन्नत को जारी और सारी फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। www.thesquran.com